نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم شروع کریں گے. فارگیو فارگیٹ، بڑا ہی معروف جملہ ہے. ہم نے ایون جے کے اردو جاننے والے لوگوں میں بھی اس کو بہت دفعہ سنتے دیکھا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس کے اصل دیکھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیشن کی ضرورت کس کو ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز سنتے سناتے وقت یہ بہت اہم چیز ہے کہ آخر مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو آپ میں سے وہ ساتھی جنہوں نے جسٹ اس ٹاپک کو سنا اور سوچ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں اس کا کیا ٹاپک ہے، کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں، تو میں چند چیزوں کو بول دیتی ہوں. یعنی اس ٹاپک کی ضرورت کس کو ہے. اگر آپ کا نام اس لسٹ میں آتا ہے تو پھر آپ سنتے رہیے، اور اگر آپ اس میں نہیں آتے تو بے شک نہ سنیے، کسی ایسے کو فارورڈ کر دیجئے، ریکمینڈ کر دیجئے کہ جس کا یہ مسئلہ ہو. اور مسئلہ کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کچھ گلے ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ ایسی باتوں کا بوجھ ہے دلوں پہ کہ جو آگے تعلقات میں وہ شیرینی آنے نہیں دیتی جو کہ مطلوب ہے. بھائی بہن کے بچوں کا رشتہ ہو کے چھوٹ گیا ہے اور یہ غم دل سے نکل ہی نہیں رہا. گھر بنا تھا، بن کے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، اور بقول ہمارے ایک شخص نے ہماری زندگی ضائع کر دی. اب ان یادوں سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے. اور ہم تو بڑے شوق سے آئے تھے اللہ کے راستے کے کام کرنے کے لیے، اور لوگوں نے تو ہمیں ڈسکریج کر دیا اور ہماری موٹیویشن ختم کر دی. لہٰذا اب ان کی باتیں بھولتی ہی نہیں، تو ہم کیسے چلیں. اسی طرح کے 50 ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم عموماً خوش نہیں رہتے. جب دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا، تو پھر اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. اور یاد رکھیے کہ بوجھ والے دل کے ساتھ کام نہیں ہوتا. آج کے ٹاپک کا ایک نام آپ گلٹ سے نکالنے کا بھی رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم گلٹ میں ہیں تو اس گلٹ کو کیسے نکالیں. اور اسی طرح سے ٹاپک ہر اس انسان کے لیے جو ایک سوال کرتا ہے کہ معاف تو کر دیا، بھولیں کیسے. یعنی آج کے ٹاپک میں معافی پہ بھی بات ہے، قرآن اور سنت سے بھی ہے اور انسانی طبیعتوں سے بھی ہے، لیکن معاف تو کر دیا، اب بھولیں کیسے. تو یہ ہے ٹاپک. لیکن اس کے لیے آپ کو آف کورس اینڈ تک سننا پڑے گا، کیونکہ شروع کے حصے میں تو فارگیونیس ہے اور آگے جا کر فارگیٹنیس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے ہر اس چیز سے فائدہ لینے کی توفیق دے اس سیشن کے دوران کہ جو کہ انسانیت کے فائدے کی ہے. کچھ باتیں ہم اپنی عقل سے سمجھ لیتے ہیں، کچھ ہم ماحول سے سمجھتے ہیں، کچھ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی بالکل کسی چیز سے بھی سیکھنے کا سبق نہیں دیتی. تو یاد رکھیے کہ کائنات بھی آپ کا استاد ہے، سورج چاند بھی آپ کے استاد ہیں، اور دکھ سکھ بھی آپ کی زندگی کے استاد ہیں. حالات و واقعات آپ کی زندگی میں جو پیش آتے ہیں وہ بھی آپ کے استاد ہیں. شرط ایک ہے کہ آپ نے ان سے فائدہ لینا سیکھا ہو. کل کا سیشن، اس کا ایک جملہ، وہاں سے آج ہم اپنی اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بات ہوئی تھی کہ انسان کے تین آئینے ہوتے ہیں. جیسے ہم ظاہری شکل و صورت دیکھنے کے لیے ایک آئینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ہمارے چہرے کے داغ دھبے بھی دکھاتا ہے اور ہماری خوبصورتیاں بھی دکھاتا ہے. بالکل اسی طرح ہمیں اپنے اخلاق، کردار، ہماری روح کو دیکھنے کے لیے بھی آئینوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں پہلا آئینہ ہمارے دوست تھے، جو ہمیں بہت ہی محبت کے ساتھ اور ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہوئے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہماری اچھائیاں بھی بتاتے ہیں اور ہماری برائیاں بھی بتاتے ہیں. جس طرح اچھے کام کے بعد دوستوں سے اپریسیشن کا انتظار ہوتا ہے، اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ضرور ہی ہماری برائیاں بھی بتائیں گے. اور اسی کو شاید لوگ آج کے دور میں پازیٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ دوستوں کی طرح دوسرا آئینہ جو ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا وہ نتائج ہیں. ہماری زندگی اگر کامیابیوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، میرا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہے، اور اس کی دلیل میری زندگی میں آنے والے حالات ہیں. اگر جس کام کو بھی میں نے سمجھ لیا کہ یہ کام میرا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے کر رہی ہوں، کرنے کے بعد مطمئن ہو کے سوتی ہوں. آپ ایک ماں ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھتی ہیں کہ میں اچھی ماں ہوں. اور اگر اس کا اپوزٹ ہے، گلٹ ہے کہ شاید میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر نہیں سکی یا ابھی میں ان کو وقت نہیں دے رہی، اسی طرح سے ایک بیوی ہونے کے ناطے اور اسی طرح زندگی کے ہر فیلڈ میں اگر آپ کے دل پر کوئی گلٹ ہے، तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। ये असल में कामयाबियों की तरफ ले जाने वाले सेशंस हैं। यकीन कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मिसाल भी कोई ना दी जाए तो भी बात वाज़े है। लेकिन आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ज़िंदगियों को खुद ही अजीरन किए होते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या आ गया, पेश हो गया, गुजर गई, इल्ला मा कद सलफ, अंधेरी रात थी, चल पड़े, रोशनी आती ही जाएगी। तो वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी को कुलक लगा लेते हैं, उसको बिल्कुल दीमक लगा लेते हैं। कोई ऐसा तजुर्बा ज़िंदगी में आ गया, मसलन तलाक हो गई, जवान बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद डिप्रेशन में गए और ऐसे गए कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को सुनने के बाद आपके मेरे दिल में एक तसल्ली और यकीन आएगा, और जो कल के सेशन की बात थी वही आ जाए कि यू कैन चेंज योर सेल्फ। वही बंदा सीखता है किसी से और सीख कर फ़ायदा उठाता है जो अपने आप को बदलना चाहता है। अगर आप में से कोई इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि अब मैं नहीं बदल सकती, अब तो मैं 40 साल की हो गई, अब तो मैं 50 की हो गई, अब तो 60 की होने को हो गई, तो याद रखिए फिर वो ना सुने। क्योंकि सबसे पहली चीज़ शर्त है कि आप चेंज होना चाहते हैं। बिल्कुल एक डॉक्टर की दुकान पर बैठे हुए एक मरीज़ की तरह, कि जो इसी उम्मीद पे तो आके बैठा है कि डॉक्टर को अपनी बीमारी बताऊंगी, फिर उसके बाद उससे कुछ दवा लिखवाऊंगी, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर डॉक्टर की बजाय किसी भी, कह लीजिए कि फार्मेसी से जाकर दवा लूँगी, ये सारा भी कर लीजिए, लेकिन अगर इरादा साथ ही हो सब कुछ कर लूँगी लेकिन खाऊंगी नहीं, तो फिर उसको तो वो नहीं बैठना चाहिए था ना, ना डॉक्टर की दुकान पे, ना फीस देनी चाहिए थी, और इसी तरह से सो ऑन। लेकिन आप देखते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो साथी भी सुने वो इस सोच के साथ सुने कि उन्होंने खुद को बदलना, मैं अपने आप को बदलूँगी, आई विल चेंज माई सेल्फ। और आप देखिए कि यही सोच है जिसने पत्थरों के दौर से गुजार कर इंसानों को आज इतनी मशीनों के दौर में रखा। हर नई चीज़ का जो ईजाद होना है, ये असल में इसी चीज़ है ना, iPhone 3 और iPhone 10 को और 15 को और 14 को जो भी आगे आने वाले हैं, कंपेयर कीजिए तो फ़र्क किस चीज़ का है, सोच क्या है। आई कैन चेंज माई सेल्फ, iPhone 3 बोला कि मैं अपने आप को बदलूंगा तो iPhone 4 बन गया, और 4 से लेकर आज 10 और उससे ऊपर चले गए। तो याद रखिए दुनिया की सारी इजादात, सारी इन्वेंशन इसी एक असूल के ऊपर चलती हैं कि वी कैन मेक आवर क्वालिटी बेटर, वी कैन अपग्रेड अस। तो जब साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ये चीज़ हो सकती है, तो क्या आप मैं 30, 35, 40 साल पुराने इंसान ही रहेंगे? जिसने ये सोच लिया वो कभी तरक्की नहीं करेगा। और वो औरत जो ये कहती है अब तो मेरे जाने के दिन है, तो फिर याद रख सकते हैं कि आप इसमें क्या होगा। तो हम देखेंगे इस पूरे सेशन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब की ज़िंदगी में पेश आए हुए कुछ वाक़यात की रोशनी में, कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ मौके दिए सब्र के। जो मौके सब्र के होते हैं ना, हम उस पर शिकवे कर रहे होते हैं, हम उस पर दुख कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, अफ़ो दरगुज़र, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और इसके लिए सबसे पहले जो आयत आपके मेरे सामने है वो सूरत नूर आयत 22 है, वल याफ़ु वल यस्फ़हु अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इनको चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। और फिर एक सवाल है शऊर बेदार करने का, अला तुहिब्बूना, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुमको बख्श दे? अगर कोई डाउट है तो सुन लो कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो ये वाक़या है इंसानों में नबुव्वत के मुकाम से नीचे के सबसे बुलंद तरीन मुकाम पे फ़ाइस एक शख्स का, जिसको सिद्दीक कहते हैं। आप और मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पहुँच सकते हैं तो मुकाम सिद्दीकियत पे पहुँच सकते हैं। यही है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो, जिन्होंने day 1 से अल्लाह के नबी के ज़रिए इस दीन को लिया और फिर इसको कबूल भी किया और हीलो हुज्जत नहीं की, अल्लाह ताला ने एक ऐसा दोराहा उनकी ज़िंदगी में ला खड़ा किया, यानी कह लीजिए कि उनको एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया कि एक तरफ तो बेटी की मोहब्बत है, और बेटी भी वो जिसको आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के, यानी सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा, कितना बड़ा टाइटल है उस बच्ची के पास, और वो बच्ची के जिसने आँख भी खोली तो शौहर के घर में आकर खोली होगी, ना उसके दिल दिमाग में कभी किसी भी बुरी चीज़ का तसव्वुर और ख्याल आया होगा, लेकिन उसी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। मारूफ वाक़या है ग़ज़वे बनी मुस्तलक से वापसी पे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी कुछ ज़ाती हाजात से फारिग होने में काफ़िले से पीछे रह गईं, सारा काफ़िला चला गया, और आयशा सिद्दीक़ा जब वापस आईं अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर, तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं सिवाय एक सहाबी के, सुफवान बिन मुअत्तल उनका नाम था। कि जिनका काम ही गिरी पड़ी चीज़ों और जो कोई लॉस्ट एंड फाउंड के, यानी लॉस्ट एंड फाउंड का जो काम होता है या लॉस्ट एंड फाउंड इंचार्ज का जो काम है वही उनका था, कि वो सबसे एंड पे जाएंगे और जो भी चीज़ दिखेगी उसको जमा कर कर एक ख़ास जगह पे रखेंगे। सुफान बिन मुअत्तल ने कुछ नहीं किया, अपनी सवारी को लाकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पास रखा, जो अपने मुंह पर एक चादर ओढ़कर लेट चुकी थी दरख्त के नीचे, इस सोच के साथ कि जब मुझे वहाँ जाकर नहीं पाएंगे लोग तो फिर यकीनन वापस इधर ही आएंगे। बड़ी अक्ल का फ़ैसला था उस छोटी सी उम्र की आयशा का रज़ी अल्लाह अन्हा, और वो क्या था कि कभी भी किसी जगह काफ़लों से बिछड़ जाएं तो वहीं खड़े हो जाएं। हम जब इधर उधर हो जाते हैं ना तो हम लॉस्ट हो जाते हैं ज़िंदगी की दौड़ धूप में। याद रखिए, अगर आप किसी गिरोह के साथ चल रहे थे और आप थोड़ी देर के लिए पीछे रह गए हैं, वहीं खड़े रहिए, ट्राई योर बेस्ट कि दोबारा मुझे इसी काफ़िले में मिलना है। हम तो छोटी छोटी बातों पे ऐसे मर मिटने को तैयार होते हैं कि तुम कौन और मैं कौन। तो बहरहाल, ये तो इस नाम की निस्बत से एक जुमला आपको मैंने दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने जब उस सहाबी की ज़ुबान से जुमला सुना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उस वक़्त तक सुफान को ये तक नहीं पता कि ये मर्द है कि औरत, क्योंकि चादर चेहरे तक ली हुई थी। हज़रत आयशा इस आवाज़ से जब चेहरा खोलती हैं तो वो पहचान जाते हैं, क्योंकि पर्दे की आयतों के नज़ूल से पहले वो आपको देख चुके थे। बस इतना ही कहा होगा कि अल्लाह के नबी की बीवी और यहाँ रह गई। अपनी सवारी करीब की, मुंह का रुख उधर था। आयशा सिद्दीका सवारी पे सवार होती हैं और सुफान उस सवारी को हांकते हुए चंद ही घंटों के फ़र्क से काफ़िले की तरफ चल पड़े और मिल गए। दूर से आता देखकर अब्दुल्ला बिन उबई के दिल का खुबस जाग उठा और उसने कुछ ऐसी बातें मारूफ कर दीं कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि पूरे मदीना में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। एक तो कोई फौत हो जाए, वो भी बहुत ही ज़्यादा सोगवारी की कैफियत होती है, लेकिन एक सोगवारी वो होती है जब हमारे दिलों में दूसरों के लिए जज्बात मर जाते हैं। याद रखिए, ये इज्तमाही ज़िंदगी जिसमें आप और मैं अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, हम अकेले नहीं जी सकते। लोग तो कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो हम एनिमल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैन में उन्स है, इंसान उन्स से भी है और नसीहा से भी है। ये दोनों लफ्ज़ आज आपकी मेरी समझदारी के लिए बहुत अहम है, अभी लिख ही लीजिए तो बेहतर है, कि इंसान के लफ्ज़ में एक उन्स है, हमज़ा नून सीन। उन्स आप सब जानते हैं, मोहब्बत को कहते हैं, मानूसियत को कहते हैं, यानी इंसान को इंसान इसलिए कहा जाता है कि वो दूसरों से मानूस होता है। और इसके साथ साथ याद रखिए कि इंसान के लफ्ज़ के अंदर नसीहा भी है, निसियान, भूल जाना। अगर मैं आज के इस टॉपिक के साथ इस जुमले को जोड़ना चाहूँ तो आप एक जेम बना लीजिए, ये जो लफ्ज़ है ना फॉरगिव, इसके अंदर उन्स है। जब आपको किसी से उन्स होता है, किसी से मोहब्बत आप महसूस करते हैं ना, तो फिर आप उसकी छोटी छोटी बात नहीं पकड़ते, और इसकी मिसाल माँ और बाप हैं। बच्चे की कितनी बातें माँ और बाप बर्दाश्त करते हैं, और इसकी मिसाल उस्ताद हैं जो अपने शागिर्दों की कितनी कमियाँ और बेशियाँ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो उन्स और वो मोहब्बत इस तरह से गालिब आ जाता है कि वो उनको पकड़ते नहीं, उनको मारते नहीं, पनिश नहीं देते। डराते तो होंगे, लेकिन डराने धमकाने के बावजूद भी सरजिंच नहीं करते, उनको पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान वाकई किसी का दिल तोड़ चुका होता है, कोई आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता, आप किसी की उम्मीदों पे पूरे नहीं आते, तो फिर इंसान का जो दूसरा रूट है ना, नसीहा, निसियान, उसको सामने ले आना चाहिए। भूल जाइए, ले लेके ना उठा कर फिर ये फॉरगिव फॉरगेट। तो फॉरगेटनेस में निसियान है जो अल्लाह ने आदम के अंदर भी रखी थी, तभी तो भूल गए थे और दरख्त का फल चख लिया था। तो बहरहाल, हज़रत सिद्दीक अकबर का ये बहुत बड़ा इम्तिहान था जब उनको ये पता चला कि मेरी बेटी पे बात करने वालों में मस्तो नाम के वो अच्छे प्यारे सहाबी भी हैं कि जो ग़ज़वे बदर में भी शरीक हो चुके थे, मुहाजिर थे, हिजरत करके मक्का से मदीना आए, गरीब थे, फ़कीर थे। अबू बकर सिद्दीक तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ही खुले हाथ के थे, अपने रिश्तेदारों को कैसे महरूम छोड़ते। आपने किफ़ालत की थी मस्तों की और देखभाल करते थे उनकी। जब पता क्या चला कि इन्हीं ने मेरी बेटी के बारे में बात की, तो देखिए, सिद्दीक तो सिद्दीक था, बाप भी तो था ना। बाप होने के नाते दिल में आ गया, मैं मदद नहीं करूँगा, आज के बाद मैं मस्तों को मनी नहीं दूंगा और उसकी टेक केयर छोड़ दूंगा। देखिए, बात तो सच थी, लेकिन बाप होने के नाते तो बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सिद्दीक होने के नाते ये बात ठीक नहीं थी। तो यह आयत इस वक्त आपके मेरे सामने एक कैटलिस्ट के तौर पे रखी गई है कि वल याफू वल यस्फहू, अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी। असल में नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन खिताब तो अबू बकर से था, और हर वो शख्स जो मुकाम सिद्दीकियत में पहुँचना चाहता है इंसानी मामलात में, उसके लिए ये एक खूबसूरत नुक्ता है कि अगर तो तुम सिर्फ आम दर्जे के सालेहीन बन के रहना चाहते हो तो फिर बदले ले लो। जाओ तुम भी कह दो कि आज के बाद मस्तों को मैं कुछ नहीं दूंगा, और वैसे भी को फर्ज तो था भी नहीं, तुमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया वो अलग बात है, अल्लाह तो आजाद करता है। लेकिन एक बात तो बताओ, क्या तुम सिद्दीकियत के मुकाम को छोड़कर नीचे सालेहियत के मुकाम पर रहना चाहते हो तो फिर जाओ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम इंसानियत की मेराज बनो और तुम असहाबुल जमीन से ऊपर उठकर साबिकून साबिकून में जाओ, तो फिर वलयाफू वलयस्फहू, फिर चाहिए कि माफ़ करे और दरगुजर करे। ये हैं वो दो लफ्ज़ जो मेरे आपके लिए इस वक्त एक ऐसा अमल का मौका ले आते हैं। यहाँ बैठकर अपने आप से एक सवाल कीजिए, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से शुरू कीजिए, ख़ानदानी ज़िंदगी पे आइए, पर्सनल मैटर पे लाएं, और मैं अगर इसको और भी खोल दूँ तो एक बेटी होने के नाते अगर बिलफर्ज़े मुहाल आपके वालदैन ने आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन की, आपको पैदा होने के बाद किसी और रिश्तेदार के घर में भेज दिया, या आपकी तरबियत अच्छी नहीं की, या आपको लट डाउन किया, या वाकई इससे भी बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं, ऐसे भी माँ बाप है जिन्होंने बच्चियों की इज्जतें तक ख़राब की होंगी, तो लिहाजा आप बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते, आपके भाई बहन आपके साथ अच्छे नहीं हैं, हर वक्त ही आपको पीछे डालते हैं और फलां को तो अच्छा कहते हैं। ये बिल्कुल वही ख्याल है जो हज़रत यूसुफ़ के भाइयों के दिल में शैतान ने डाला और उसके कत्ल तक पहुंच गए। आपको भी ये ख्याल आ सकता है कि क्या हुआ, और मेरे भाई बहन अच्छे नहीं तो फिर मैं उनके साथ क्या करूं? तो वहाँ आप एक जुमला लिख लीजिए कि अभी तक मेरे भाई बहनों ने मुझे कुएं में तो नहीं फेंका। और अगर मेरे माँ बाप ने मेरे साथ कोई वाकई ज्यादती कर ही दी है, तो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप की तरह अपने बाप से ये धमकियाँ तो नहीं मिली कि तुझे पकड़ कर मैं दूर कर दूंगा और मेरी नज़रों के से पीछे हो जा। यानी मिसालें बेशुमार खुल पड़ती हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए तो आप एक स्कूल कॉलेज के दौर में किसी टीचर के बारे में कह सकते हैं कि मैं उनको माफ़ नहीं कर सकती, वो मेरे किरदार को ख़राब करने में बहुत ऐसी हुई। यानी 10 मिसालें हर एक की ज़िंदगी में। और याद रखिए कि मुझे तो इतना समझ है कि इंसान एक पज़ल की तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप उनको बिखेर दीजिए तो वो घर का गंद है, हर वक्त इधर उधर टुकड़े बिखरे दिखेंगे, लेकिन उन्हीं को जोड़ दीजिए तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनती है। हम इंसान अपनी आदत और अपने छोटे छोटे मामलात के टुकड़ों को सही जगह पे रख लें तो हमारी ज़िंदगी कामयाब है, और अगर हम इन्हीं चीज़ों को टेढ़ा मेढ़ा जोड़ने में ज़िंदगी गुजार दें तो बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें और गिल्ट की वजह से हम कभी टेंशन का शिकार हैं, कभी दुख का। लेकिन यहाँ इतना समझ लीजिए कि आप और मैं, हम में से किसी एक के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि उसको ज़िंदगी में कभी किसी से वास्ता नहीं पड़ा। और याद रखिए कि दूसरे दूर के नहीं होते, करीब के होते हैं। मसलन दो गाड़ियाँ आपस में कब टकराती हैं? जब वो बिल्कुल आमने सामने थी ना। कोई गाड़ी जो अभी तकरीबन 50 फुट पे है वो टकराती है? दूर से जितनी मर्जी गाड़ियाँ गुजरती रहें दूसरी रोड्स पे, दूसरी साइड पे, उससे तो आपका टकराव नहीं होता, हमेशा हादसा साथ रहने वालों में होता है। तो ये टॉपिक इसलिए भी बहुत सेंसिटिव है कि जो लोग जितने साथ होते हैं ना, उतने ही एक दूसरे के साथ टकराव की, एक दूसरे के साथ रगड़ लगने की, फ्रिक्शन की, और इसी तरह से एक दूसरे की बात बुरी लगने की उम्मीद होती है जितनी के दूसरों से नहीं होती। कभी किसी की गाड़ी को कोई टक्कर नहीं मारेगा जो उसके सामने नहीं। तो ये मौजू आपके मेरे इर्द गिर्द से मुतल्लिकीन में है। अब जब लोग आपके मेरे लिए तकलीफ़ का ज़रिया बनते हैं, और स्पेशली अगर अबू बकर सिद्दीक़ की सिचुएशन ले लीजिए कि आपके ख़ानदान के वही लोग कि जिनकी आप टेक केयर भी करते हैं, जिनको आप माली या किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं, जब उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ आती है तो फिर तो बहुत ही दुख होता है ना। तो उस वक्त में फिर हमने क्या करना है, ये जुमला लिख लेना है कि अल्लाह तो है बो नहीं यकफिर अल्लाहु लकुम। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको पसंद करे? तो आप कहेंगे मैं तो चाहती हूँ। हमने तो रमज़ान की आखिरी 10 रातों में भी यही मांगा ना कि अल्लाहुम्मा इन्ना कफूवन तुहिब्बुल अफ्वाफ वन्नी, कि अल्लाह तुम माफ़ी को पसंद करता है, माफ़ भी करता है, तो मुझे भी माफ़ कर दे। तो फिर आप तो कहेंगे, और अबू बकर सिद्दीक ने इस पे जुमले बोले थे, क्यों नहीं अल्लाह ताला हम पसंद करते हैं माफ़ी को कि तू हमें माफ़ कर दे। तो अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो पहली बात इस आयत में से जो आपने मैंने सीख ली वो तो आप समझ गए। एक आध और बात लेकर आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सदमा औलाद का सदमा होता है। तो यहाँ मैं अबू बकर सिद्दीक को एक बाप होने के नाते और आपको वालदैन होने के नाते मशवरा दूंगी कि अबू बकर सिद्दीक की तो बेटी की इज्जत पे हर्फ डाला, अब्दुल्ला बिन उबई का जहन था जहाँ से ये गंदी चीज़ निकली, और फिर मस्तों समेत हमना बिनते जहाश और चंद मुखलसीन भी शामिल हो गए, और उन्होंने मदीना में हज़रत आयशा के बारे में बातें शुरू कर दी। मारूफ, एक महीना तक आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी के कुर्ब से दूर हैं। आपकी वो मोहब्बत नहीं, वो मिलान नहीं है। बीमारी की सूरत में जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत और नज़रबरदारियाँ होती थी आयशा के लिए रदी अल्लाहु अन्हा, वो नहीं दिखती। ये कोई छोटा सदमा है, यानी कह लीजिए इमोशनल टॉर्चर से आयशा सिद्दीका अकेली नहीं गुजरी, उनके माँ बाप गुजरे, खुद अल्लाह के नबी गुजरे। तो जो लोग अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दें, वो कितने बड़े जुर्म के मर्तकब होंगे। उनके बारे में आ रहा है कि अला तुहिब्बुना यग़फिरल्लाहु लकुम, तो आपको मुझे अगर वालदैन होने के नाते अबू बकर सिद्दीक़ की तरह और उनकी बीवी की तरह उम्मे रुमान की तरह अगर हमें कुछ सताए, तो हमेशा याद कीजिएगा कि जब उन्होंने कहा था कि हम माफ़ करते हैं, बल्कि इसका एक अमली फिर पहलू भी सामने आया कि इस आयत के बाद ना सिर्फ ये कि अबू बकर सिद्दीक़ ने जो कसम खाई थी उसका कफ़ारा दिया, कसम तोड़ी, बल्कि जितना पहले देते थे मस्तों को अब उससे ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो अमल की बात लिखिए, ये है वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में सुकून लाएगी, खुशी लाएगी। याद रखिए, दूसरों को माफ़ ना करके हम खुद बोझल होते हैं, हम खुद उस बोझ को उठा उठा कर फिरते हैं। दूसरे को माफ़ ना करने का नुकसान दूसरे से ज़्यादा हमें होता है, ये गिल्ट होता है, और ये गिल्ट फिर बाज़ दफ़ा एक कह लीजिए जुनून और पागलपने में ढल जाता है जब दोनों में से कोई एक अचानक मर जाता है। और आप कहते हैं मैं भाई से माफ़ी नहीं मांग सकी, मेरी तो सगी बहन थी, मैंने तो 10 साल उसकी शक्ल ना देखी, मेरी बहन ने कितनी कोशिशें की, और मेरे बच्चे, बाज़ दफ़ा माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में होता है, और इसी तरह सोन, मैंने तो अपने उस्तादों के दिल तोड़ दिए, मैंने तो अपने दीनी साथियों के बारे में न जाने क्या कुछ बोल फोल बोल दिया। तो गिल्ट में जब ढलता है तो फिर इंसान परेशान होता है। कभी भी कोई तकलीफ़ आए तो सोच लीजिए, आप शौहर हैं, आपकी बीवी पे कोई बात आई, या आपके दिल में बीवी से बदगुमानी है, आपको अपनी बीवी की कुछ आदत अच्छी नहीं लगती, आप अपनी बीवी के बारे में परेशान हैं, और सेम थिंग बीवी है तो उसके दिल में शौहर के मामले में कुछ गड़बड़ है या बनती नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह एक एक मामले को देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा को एक बुनियाद बनाकर अल्लाह ने माशरे में आपको मुझे भी खुश रहने का एक राज सिखा दिया। और वो क्या है कि जब भी कोई आप पे बात करे, आपकी इज्जत खराब है कोई बात नहीं, कोई आपके बारे में नेगेटिव जुमला बोल देता है तो क्या हुआ, किसी ने जिना की तोहमत तो नहीं लगाई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी किसी किस्म की आपको तकलीफ दे, आप उस वक्त ये सोचा करें कि ये छोटी है, अभी मेरे साथ ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। फिर इसके बाद एक हदीस से हम थोड़ी सी मदद लेते हैं इस मौजू को समझने के लिए, और हदीस यकीन कर इतनी खूबसूरत है कि अगर मेरी आपकी चेकलिस्ट में ये हदीस आ गई, अपने किरदार को इसके मुताबिक ढालना है, तो सुकून और खुशी आएगी। रिवायत है सही मुस्लिम की 2588, और सही दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़त मिन मालिम वमा ज़ाद अल्लाहु अब्दन बी अफ़्विन इल्ला इज़्ज़न वमा तवादा हदुल लिल्लाहि इल्ला रफ़ाहुल्लाह। सदका माल को कम नहीं करता, ये तो एक मुस्तकिल टॉपिक है। ये जो शैतान दिलों में डालता है कि अल्लाह के रास्ते में कुछ माल लग जाएगा, कुछ वक्त लग जाएगा, कुछ स्किल्स लग जाएंगी, कोई पैसा देना पड़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये गलत है। आज से इसको जहन से निकाल दीजिए, हमेशा सदका देने से, माल का सदका है तो माल बढ़ेगा, वक्त का सदका है तो वक्त बढ़ेगा, और ये जो मौजू चल रहा है तो लिखिए ये इज्जत का सदका है। रिवायत मिलती है कि हर चीज़ की ज़कात है, तो अक्ल की ज़कात माफ़ कर देना है। दूसरों को ऐसे ही खामखा अपने दिल में एक ऐसा नेगेटिव पार्ट बनाकर रखना कि जिसके बाद आप खुद भी ना मुतमईन होके काम करें, तो याद रखिए उनको माफ़ कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, अफ़्व दरगुजर करने से आदमी की इज्जत बढ़ती है, ये बहुत ही अहम बात है। आप देखिए कि अफ़ क्या है, फॉरगिव, और दरगुजर क्या है, फॉरगेट। आप मैं अमूमन देखते हैं कि लोग अपनी अना के पहाड़ पे खड़े रहते हैं लेकिन माफ़ी नहीं मांगते और दूसरों को माफ़ भी नहीं करते, दोनों तरफ इस ड्यूल वे, यानी फॉरगिव एंड फॉरगेट इज ड्यूल एक्शन। आप किसी के मामले में अगर बुरा सोच रहे हैं तो वो भी तो आपके मामले में बुरा सोच रहे हैं, अगर आप अना की वजह से अकड़े पड़े हैं तो उनकी भी अकड़ कुछ कम तो नहीं है ना। तो ऐसे मामले में इस हदीस को याद रखिएगा कि फॉरगिव एंड फॉरगेट से आदमी की इज्जत बढ़ती है। और आप देखिए अल्लाह के नबी ने इस बात को इतना एम्फेसाइज किया है कि उलमा कहते हैं कि जिसको इस पर एतराज़ है ना, गिला है, तो गोया के उसने इस बात को सही समझा ही नहीं है। आप फॉरगिव कीजिए, आप फॉरगेट कीजिए, आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप कहते कैसे, ये कैसे हो सकता है? आप देखिएगा कि ये ऐसे हो सकता है कि आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हुए, दबे, लेकिन हमेशा की इज्जत मिली। कल के सेशन में जो से हमारा था पुरकशिश शख्सियत के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मुकाम पर क्या छोटे हुए, क्या आपने अफ़ो दरगुज़र किया। और इसी के साथ अगर तीसरी भी चीज़ मिला लीजिए जो इस हदीस में हमें मिलती है कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो यानी हम्बलनेस, ह्यूमिलिएशन नहीं यानी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना बट हम्बल करना है, और इनकी सारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला इसका रुतबा बुलंद फरमा देते हैं। अगर हुदैबिया की सुलह के मौके पे अल्लाह के नबी छोटे ना बनते तो कभी भी फिर 2 साल के अंदर इतने बड़े ना हो जाते कि मक्का की चाबियां आपके हाथ में हो जाती, और वही खाना काबा जहां से लोगों ने बड़ी रौनक से आपको निकाला, आप उसी खाना काबा के दरवाजे के अंदर से दाखिल ना होते। और सो ऑन, जो भी इज्जत आपको फतेह मक्का के बाद मिली वो सारी मिली, इज्जत बढ़ती है। शैतान हमें कहता है, नहीं लो तुम कोई छोटी हो, तुम छोटे बाप की बेटी हो और तुम फुलां हो, यानी इतने बड़े कचोके हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर आपको कुछ टिप्स मज़ीद दूंगी, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ले लीजिए, कभी भी किसी के साथ आपसे ज्यादती हो गई इसको लीजिए पहले। आपने कोई बात बोल दी, मतलब माँ बाप होते हैं, कोई बुजुर्ग है खानदान के, कोई बड़े होते हैं, हो गई बात, मतलब एक घर में रहते हुए आप बहू हैं, हो सकता है आपकी तबीयत खराब थी, आप गुस्से में आ गई, आप चिड़चिड़ी हो गई, आपने सास को, अम्मा को, दादी को, नानी को, या कोई और इसी रिस्पेक्ट पे कोई है, या आपके कोई और एंगल में रिस्पेक्टफुल लोग हैं, किसी उस्ताद के साथ कुछ बदतमीजी हो गई, किसी बुजुर्ग के साथ हो गई, को घर की मेड थी, उम्र में बड़ी थी, उससे हो गई, क्या करें। जो बात मैं कहने लगी उसको बड़े गौर से सुनिएगा। सिर्फ माफ़ी ना मांगे बल्कि अपने बच्चों जो आपके अंडर ट्रेनिंग लोग हैं उनके सामने माफ़ी मांगे। मैं किसी की बात सुन रही थी और उन्होंने कहा कि किसी बुजुर्ग के बारे में उनसे कुछ ऊंची बात निकल गई, बाद में उनको बहुत गिल्ट आया। जब गिल्ट आया तो उन्होंने सोचा कि मैं जाकर अंकल जी से माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन वो अकेले नहीं गए, उन्होंने अपने बच्चों को, जो जवान होते हुए बच्चे होते हैं 8-10 साल के, उनको साथ लिया। बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि आप बच्चों को साथ क्यों लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी लॉजिक ये दी कि आज मैं अपने बच्चों के सामने अपने बुजुर्गों से, बड़ों से माफ़ी मांगूंगा तो मेरे बच्चों को माफ़ करने की आदत पड़ेगी, माजरत करने की आदत पड़ेगी और आई एम सॉरी कहने की आदत पड़ेगी। तो याद रखिए, हम अपने बच्चों को भी बड़ा सख्त पाल रहे हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम अना के पहाड़ पर इस तरह सवार रहते हैं और खुद को तकलीफ देते रहते हैं। हालांकि आप देखिए, जो माफ़ी मांग लेता है ना वो तो बहुत बहादुर है, क्योंकि वो खुद से जंग जीत कर आता है। नफ्स तो नहीं कहता कि माफ़ी मांगो, हाँ ये जो हूँ होती है ना, हाँ मैं किसी से कम हूँ, मैंने इतना कुछ किया, मैं माफियाँ भी मांगता फिरूँ, लो मैं तो इतना मुखलिस था, मेरी तो कदर ही नहीं की, और मैं तो ऐसी ही अच्छी थी और लोगों ने तो बस मुझे मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया। तो ऐसे वक्तों में लिखिए ये एक जैम, जो माफ़ी मांगता है वो बहुत बहादुर होता है, क्योंकि वो खुद से जंग जीत कर आता है। तो जीतता कौन है जो बहादुर हो, नफ्स तो नहीं आपको माफ़ी मांगने देगा। और याद रखिए, माफ़ी मांगिए, आपका कद पहले से बड़ा हो जाएगा, मोहब्बत पहले से ज़्यादा मिल जाती है, अंदर से हम मान चुके होते हैं हमारा कसूर, तो हम कहते हैं मैं क्यों मानूँ। इवन आप देखिए कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, कोई घर तक टूट गया, 99.9 अगर दूसरे की गलती है तो 0.1% आपकी भी थी। अगर किसी ने आग लगाई तो उस जलती पे तेल तो आपने भी डाला होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता कि 0.1 हो, 50-50 ही होता है। घर टूटा तो क्यों टूटा, मान लीजिए सारा कसूर उनका था तो क्या आपका कोई नहीं था। जिंदगी का असूल बना लीजिए कि जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं ना तो दूसरे नहीं मनवाते, दूसरा कब तक आपके पीछे लगा रहेगा जब आप रेजिस्ट करेंगे। मियाँ से झगड़ा क्यों होता है कभी आपने सुना, आप अपने प्रूफ दे रही हैं, वो अपने दे रहे हैं, आपकी भी जुबान चल रही है उनकी। अब जब तक आप मानेंगी नहीं, एक तो उनकी अना है, उनके अंदर अना है, मर्द में अना होती है, वो कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि अब मैं हार मान लूँ और दूसरी तरफ से आप बोल रही हैं। एक सेकेंड के लिए खामोश रहें, ओके आई थिंक सो आई वॉज रॉन्ग, फ़ौरन वो कहेंगे नहीं मेरा ख्याल है गलती मुझसे भी हो गई। जब आप डिफेंस और ऑफेंस के फ़र्क को समझ जाते हैं ना तो आपको यह हदीस बड़ी प्यारी समझ आ जाती है। मतलब एक होती डिफेंसिव और एक होती ऑफेंसिव। जब आप अपने आप को डिफेंड करते हैं ना तो फिर अगला आपके ऊपर हमला करता है, मानती नहीं, एक तो गलती करती है फिर मानती नहीं है, चोर और ऊपर से फुला, आपने ऐसे मुहावरे तो सुने होंगे, एकदम रिलैक्स हो, ओके आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, और ज़रा सा स्माइली कर दें, मेरा ले मैं ही गलत हूँ, मेरी ही गलती है। यकीन करें, हस्बैंड वाइफ के अगर मैं आपको जोक्स बताऊँ ना तो 90% आपके झगड़े ख़त्म हो जाएं, जो इस वक्त पूरा मौजू नहीं है क्योंकि इस वक्त हमने बहुत कुछ कवर करना है अभी इंशाल्लाह। बस इतना कह लीजिए, माफ़ी मांगने में देर ना कीजिए। और बचपन से ये बात सीखनी चाहिए, माजरत के साथ हम, मैं तो अपने कल्चर को कहूँगी क्योंकि मैं इंडिया के लोगों को बहुत करीब से ऐसे तो नहीं जानती ना जैसे पाकिस्तान में जानती हूँ, तो और मिसाल भी अच्छी नहीं दे रही इसलिए मैं सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम बोल दूँ प्यार से। हम पाकिस्तान के माँ बाप के तरीक़े तरबियत में माफ़ी मांगना नहीं सिखाते बच्चों से। इवन अगर एक भाई, छोटा भाई रोता हुआ आया, बड़े ने मुझे ये कहा वो किया, तो फौरन उसके पास जाएंगे, ज़ोर से थप्पड़ मारेंगे। बच्चे कहते हैं मेरी किसी गलती से भाई बहन गिर गया, कुछ हो गया, माँ आई उसने थप्पड़ मारा, बाप आया उसने थप्पड़ मारा, बहन आई थप्पड़ मारा, यानी उसका मुंह लाल कर दिया। बाद में पता चला कि कसूर वो छोटे भाई बहन का ही था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अगर बच्चों को थप्पड़ मारने पे आ चुके होते तो क्या उन बच्चों की ऐसी प्यारी सलाह होती कि बाद में अल्लाह उनको नबूवत भी देता? तो याद रखिए, फॉरगिव एंड फॉरगेटनेस।